ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की 10 और 2 संयुक्त समितियों सहित कुल 12 संसदीय समितियों के सभापति निर्वाचित बिना रोजगार अनुबंध के किसी को भी काम पर न रखने न लगवाने का श्रम मंत्रालय का आग्रह। वाहन चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के लिए राजस्व जमा करने के 24 घंटे के भीतर लाइसेंस हस्तांतरण की व्यवस्था लागू। स्वास्थ्य संस्थानों में अब शनिवार और रविवार 2 दिनों की छुट्टी। और इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर सहमति। ईरान द्वारा व्यावसायिक जहाजों के लिए हार्मुज जलमार्ग खुला होने का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के 10 विषयगत समितियों और 2 संयुक्त समितियों के सभापतियों का निर्वाचन किया गया है। आज आयोजित अलग अलग बैठकों में प्रतिनिधि सभा की 10 विषयगत समितियों और 2 संयुक्त समितियों सहित कुल 12 समितियों के सभापति चुने गए। इसी बीच संसदीय समितियों के नवनिर्वाचित सभापतियों ने आज ही पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने नवनिर्वाचित सभापतियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित सभापतियों ने आज ही अपने अपने समितियों में पदभार भी संभाला। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि संविधान, कानून, विधि और प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कानून निर्माण की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। आज सिंह दरबार में संसदीय मामलों के पत्रकार समाज के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में सभामुख अर्याल ने कहा कि यदि संसद से कानून जल्द बनते हैं तो नागरिकों को उसका तुरंत लाभ मिलेगा, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नेता चयन को लेकर चर्चा हुई। निर्वाचन समिति के संयोजक एवं कांग्रेस के सह महामंत्री प्रकाश रसायली स्नेही ने बताया कि सहमति के प्रयास के लिए और समय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुनने का प्रयास किया गया और पार्टी नेतृत्व से भी परामर्श कर अगली बैठक में निर्णय लेने पर सहमति बनी है। कांग्रेस के अलावा संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दल पहले ही अपने संसदीय दल के नेता का चयन कर चुके हैं। प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के 38 सांसद हैं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने बिना रोजगार अनुबंध के किसी को भी काम पर न रखने और न लगवाने का सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया है। मंत्रालय ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कुछ अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमानुसार श्रम अनुबंध के बिना काम पर लगाए जाने तथा कानून द्वारा निर्धारित समय से अधिक काम कराए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पर मंत्रालय का गंभीर ध्यान आकर्षण हुआ है। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि कानून के अनुसार प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता, अतिरिक्त काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त समय प्रतिदिन 4 घंटे तथा सप्ताह में 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रचलित कानून का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया गया है। साथ ही इसके विपरीत कार्य जाने पर श्रम आयन 2074 के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल पास करने के बाद राजस्व जमा करने के 24 घंटे के भीतर लाइसेंस छापकर हस्तांतरण करने की व्यवस्था आज से लागू हो गई है। कावरे प्लांचों की पनौती नगरपालिका 5 स्थित सुरक्षा मुद्रण केंद्र का निरीक्षण करते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने लाइसेंस छपाई की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि लाइसेंस छपाई प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और लक्ष्य है कि आगामी आषाढ़ मासांत तक सभी लंबे लाइसेंस छाप दिए जाए। उन्होंने नागरिकों के डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सेवा को नागरिक केंद्रित बनाने और शिकायतों के समाधान पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्री ने केंद्र में मौजूद उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया और कहा कि भारी निवेश के बावजूद कई उपकरण लंबे समय से उपयोग में नहीं है, जो चिंता का विषय है। इस अवसर पर सुरक्षा मुद्रण केंद्र के कार्यकारी निदेशक देवराज झुंगाना ने बताया कि संस्था को दीर्घकालीन रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यावसायिक योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पासपोर्ट, चेकबुक, स्मार्ट कार्ड, हुलाक टिकट और अंततः शुल्क स्टिकर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज छापे जा सकते हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य संस्थानों में भी अब शनिवार और रविवार 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य संस्थानों में भी शनिवार और रविवार को 2 दिन छुट्टी रहेगा। मंत्रालय के अनुसार अस्पतालों की आपातकालीन इमरजेंसी सेवा और भर्ती मरीजों का उपचार 24 घंटे जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह भी अनुरोध किया है कि छुट्टी के दिनों में मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल यथासंभव सेवाएं उपलब्ध कराएं। आवश्यक न होने पर मरीजों को नजदीकी उपयुक्त अस्पताल में रेफर करें और एम्बुलेंस को हमेशा तैयार स्थिति में रखें। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू ने सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पिछले 6 महीनों में विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल 309 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसर के प्रवक्ता एवं SP पवन कुमार भट्टराय ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में से 61 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पिछले 6 महीनों में काठमांडू पुलिस ने विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयों में सेवाग्राहियों को परेशान करने वाले 21 बिचौलियों, आम नागरिकों को दुख हैरानी देने वाले 136, यौन संबंधी गतिविधियों में शामिल 128 और गुंडागर्दी में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता भट्टराय के अनुसार युगांडा से नेपाल आकर यौन व्यवसाय में शामिल 20 महिलाओं को 1 वर्ष के लिए नेपाल प्रवेश पर रोक लगाते हुए अध्यागमन विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया है। श्रमिक भेजने के लिए अनुमति प्राप्त संस्थानों को अब वैदेशिक रोजगारी के मांग पत्र पर पूर्व स्वीकृति आवेदन करते समय संपर्क व्यक्ति का नाम, संपर्क नंबर और स्थान अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। वैदेशिक रोजगार विभाग ने आज एक सूचना जारी कर कहा है कि श्रमिक भेजने के लिए लाइसेंस प्राप्त संस्थानों को श्रमिक मांग से संबंधित विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर विभाग को इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 7 प्रदेशों में अभौतिक सांस्कृतिक संपदा के सूचीकरण के लिए परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से 7 प्रदेशों में कम से कम 20 अभौतिक सांस्कृतिक संपदाओं का सूचीकरण किया जाएगा। ये जानकारी मंत्रालय ने दी। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना में 7 प्रदेशों की 17 समुदायों की सांस्कृतिक परम्पराओं को शामिल किया जाएगा। ये जानकारी मंत्रालय के सचिव मुकुंद प्रसाद निरौला ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने आज युद्ध विराम अवधि के दौरान व्यावसायिक जहाजों के लिए हार्मुज जलमार्ग खोलने की घोषणा की है। इसराइल और लेबनान के बीच आज 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद ईरान ने हार्मुज जलमार्ग खोलने पर सहमति जताई है। इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम समझौते के लागू होने के साथ ही अमेरिका ने कहा है कि ये युद्ध विराम इससे भी अधिक समय तक बढ़ सकता है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि ये लेबनान के साथ ऐतिहासिक समझौते का अवसर पैदा करेगा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी युद्ध विराम समझौते का पालन करने की बात कही है। इस समूह ने यह भी शर्त रखी है कि लेबनान की भूमि पर हमले रोके जाएं और इजरायली सेना वहां की गतिविधियां बंद करे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की 10 और 2 संयुक्त समितियों सहित कुल 12 संसदीय समितियों के सभापति निर्वाचित बिना रोजगार अनुबंध के किसी को भी काम पर न रखने न लगवाने का श्रम मंत्रालय का आग्रह है। वाहन चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के लिए राजस्व जमा करने के 24 घंटे के भीतर लाइसेंस हस्तांतरण तरन की व्यवस्था लागू। स्वास्थ्य संस्थानों में अब शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी। और इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर सहमति। ईरान द्वारा व्यावसायिक जहाजों के लिए हार्मुज जलमार्ग खुला होने का ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।